हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जन्म गुह्यम भगवतो
भगवतो
एतत् प्रयतो नरः
एतत् प्रयतो नरः
सायं प्रातः गृणन् भक्त्या
सायं प्रातः गृणन् भक्त्या
दुःख ग्रामाद् विमुच्यते
दुःख ग्रामाद् विमुच्यते।
ओके, तो भगवान के भगवतः भगवान के इन गुह्य जन्मों को, भगवान के जितने भी अवतार है उनके और भगवान कृष्ण के भी, या एतत् प्रयतो नरः, जो व्यक्ति बड़ी सावधानी से, प्रयतः मतलब बड़ी सावधानी से समाहित होकर के, चित्त को समाहित करके, शुद्ध होकर के, यह नर, कोई भी नर, कोई भी इंसान अगर सुनता है, पढ़ता है, कैसे और कब, तो कह रहे हैं सायं प्रातः, सायं मतलब शाम को, प्रातः मतलब सुबह, सुबह और शाम, गृणन, गृणन मतलब कीर्तन करता है, कैसे, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से, तो कहते हैं दुख ग्रामात विमुच्यते, वह दुख के समूह से मुक्त हो जाता है। अर्थ समझ में आ गया? रूपा जी कीर्तन चल रहा है क्या इसमें? ठीक, तो अब हम लोग उसके अनुवाद को पढ़ते हैं। जो कोई भी भगवान के गुही अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। इसका लिंक दे रहे हैं श्रील गिरधर लाल जी की टीका से। अब इन अवतारों के कीर्तन के फल को कह रहे हैं, क्यों करना चाहिए ये कीर्तन, अगर आप सुबह शाम करेंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अब उनकी बड़ी सुंदर सी टीका है, छोटी सी, उसको देखते हैं। यहां वर्णाश्रम आदि के नियम का विचार नहीं है, अपितु यह अर्थात कोई भी व्यक्ति जो समाहित चित्त होकर सुबह और शाम भगवान के अवतारों के रहस्यमय जन्म का भक्ति के साथ कीर्तन करता है, तो वह दुख ग्राम अर्थात दुखों के निवास भूत जो यह संसार है उससे मुक्त हो जाता है। क्या क्या अर्थ है जरा देखिए उसका। एक बात पे वो फोकस कर रहे हैं, वह है यह मतलब कोई भी, यह का मतलब है कोई भी, चाहे वो धोती कुर्ता में हो चाहे वो गमछे में हो, कोई भी अगर वह कृष्ण का कीर्तन करता है, अवतारों का कीर्तन करता है, तो वह मुक्त हो जाता है। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है धोती कुर्ता पहनने के लिए, गमछे में आके क्लास सुने, लेकिन वह मुक्त हो जाता है। कोई बात नहीं, ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन बहुत ध्यान दीजिए, यह का मतलब है स्त्री हो पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या कोई नहीं हो, अगर मान लीजिए बोल नहीं सकता है तो कोई कीर्तन कर रहा तो सुन रहा है, इसमें वर्णाश्रम आदि का कोई विचार नहीं है, ये बात बोल रहे हैं, सभी कोई से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और दूसरा वो कह रहे हैं दुख रहस्यमय क्यों है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, जो साधना नहीं कर रहा, कोई नाम जप नहीं करेगा, उसे भगवान की लीला समझ में नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं दुख ग्राम अर्थात दुखों के निवास भूत जो है संसार है उससे मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? ग्राम का अर्थ क्या समझते हैं आप? गांव। गांव में कितने लोग रहते हैं? कम से कम एक से तो अधिक। अब एक आदमी रह रहा है तो आप उसको गांव नहीं कहेंगे, तो ग्राम का मतलब हो गया आप उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और काफी समय से रह रहे हैं, भी कह सकते हैं घर बना लिए हैं। तो इसी तरह से दुख ग्रामा विमुच्यते मतलब ये जो संसार है ये दुखों का गांव है, समझ में आ रहा? दुखों का गांव, विभिन्न प्रकार के कष्ट जीव को यहां पर सताते रहते हैं। तो जो भगवान के कीर्तन को करता है, इस भगवान के अवतारों के कीर्तन को करता है सुबह शाम और उनको सुनता है या फिर, तो वह व्यक्ति दुखों के बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। भगवद गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अब देखिए भगवद गीता पढ़ने का फायदा, आपको वो श्लोक याद आ रहा है भगवद गीता का ये? हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी इसको बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा करते थे, एक जगह कहा कहते सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को समझता है, वह चाहे कैसे भी मरे, कहीं पे भी मरे, किसी भी तरह मरे, वह भगवत प्राप्ति करेगा। जिस प्रकार से इस जगत में हम कुछ एग्जाम पास करने के लिए बहुत पढ़ाई करते हैं कि नहीं, सभी ने की, मैंने भी की है, उसी प्रकार से इस मृत्यु रूपी एग्जाम को पास करने के लिए एक ही पढ़ाई करनी है, और भगवान के लीलाओं का, भगवान के अवतार का, भगवान के तत्व का अध्ययन करना। अध्ययन मतलब सीरियसली पढ़ना, उसको समझने का प्रयास करना। जब हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, एग्जाम के समय भूल ना जाएं। वैसे तो ये विनोद की बात है, मान लो मृत्यु से पूछा जाए भगवान कौन है, अरे एक मिनट क्या बताया था क्लास में, क्या था वो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हाँ कृष्ण आ जाना चाहिए मुख से, वैसे तो आ ही जाएगा। इसमें एक छोटा सा विनोद की बात है कि एक भक्त हमारे यहाँ पे फरहा में एक हॉस्टल में प्रीचिंग करने जाते थे, उन्होंने 6 महीने प्रीचिंग किया, प्रसाद खिलाया, कीर्तन किया, सब कुछ किया। तो एक लड़का पता नहीं क्या प्रसाद खाने आता होगा, जो भी हो, तो फिर उसके बाद वो प्रभु जी ने फिर प्रचार कार्य बंद कर दिया। फिर वो व्यक्ति दिल्ली गया, 1.5-2 साल के बाद हमारे वृंदावन बिहारी प्रभु को वृंदावन में आके मिला, बोला प्रभु जी वो कौन सा मंत्र आप बोल रहे थे, मतलब इतना कीर्तन हुआ कुछ हुआ, उसको हरे कृष्ण मंत्र याद भी नहीं हुआ, इतने लोग जो है ढके रह सकते हैं। तो ये समझ सोचिए कि हमको अगर समझ में आ रहा है तो आसान बात है, अगर नाम जप ना करें, भक्तों से बार बार ना सुने तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, यही समझ लेना चाहिए इससे। दिव्य का अर्थ है अलौकिक है, और क्या कह सकते हैं, स्पिरिचुअल है, अप्राकृत है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं होते। क्यों कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, क्या श्लोक है कुंती महारानी का, स्मरण, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्मशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमाम्बुदाम्बुजं। भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि हमारे पास कुछ श्रवण करने के लिए रहे, और ध्यान देना चाहिए कि भौतिक वार्ता को श्रवण करके ही हम अपने अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। एक उदाहरण मैंने आपको नदी का दिया था, नदी का उदाहरण याद आ रहा है, यस, नदी मतलब गंगा जी नदी, हाँ होती है, समझ रहा हूँ। उसका तात्पर्य यह है कि गंगा जी विष्णु के चरण से आई है, समुद्र, हाँ गंगा जी समुद्र की ओर जाती है, ये तो व्याख्या नहीं हुई। जो भौतिक वार्ता है वो एक ऐसी नदी है जो जन्म मृत्यु रूपी सागर की तरफ जा ही रही है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए वह जन्म मृत्यु सागर में जा रही है। और जो कृष्ण कथा है वो कैसी नदी है, जो भगवत अमृतत्व के सागर में जाए, लेके जाएगी मुक्ति के लिए, मुक्ति के एकमात्र साधन कह लीजिए, मोक्ष के लिए ले जाती है। मोक्ष मतलब भगवत प्रेम, मैं मोक्ष मतलब वो सायुज की बात नहीं कर रहा हूं, इतना आप समझते हैं। वे गुह्य हैं, और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीर, इस विषय की गम को होना चाहिए, इस विषय को गंभीरता, सॉरी, वे गुह्य हैं और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आपके हृदय में, हमारे हृदय में जिज्ञासा होगी भगवान के तत्व को जानने की, तो भगवान व्यवस्था कर देंगे कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये मेरा कई बार अनुभव है कि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होता है और तीव्र जिज्ञासा होती है, तो अकस्मात वो ग्रंथ में नहीं पढ़ रहा होता हूं, भगवान प्रेरणा देते हैं, उस ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ा तुमने बहुत दिन से, उसको पढ़ो, मध्य लीला चैप्टर 5 है, कुछ भी ऐसे बोलेंगे, और फिर वह अकस्मात, अरे ये तो एकदम स्पष्ट समझ में आता है। तो हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, तो भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। यही बात है, क्योंकि आप कहेंगे इतना आसान है सबके लिए मुक्त होना, नहीं आसान है, क्योंकि लोग इतना गंभीरता से भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं होते। ऊपर ऊपर से वो कुछ लीला सुन लेंगे और सोचते हैं बस हो गया। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश रूप, प्राभव विभव, ये सब कौन कहेगा, इस झमेले में पढ़ने की क्या जरूरत है, उनको झमेले लगते हैं। लेकिन जितना हम इस प्रकार से समझते हैं उतना भगवान की महत्व हमें अधिक समझ में आता है। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है, विमुक्ति का अर्थ है वह दोबारा कभी इस जगत में नहीं आते। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतरदर्शन प्राप्त हो जाता है। अंतरदर्शन, इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कोई बता सकता है? अंतरदर्शन का एक अर्थ ऐसे लग रहा है कि हृदय में ही देखने लगेगा, लेकिन अंतरदर्शन का ऐसा लगता है अर्थ, हाँ इनसाइट लिखा हुआ है, इनसाइड मतलब उनकी सूक्ष्मता को समझ पाएगा। जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, यथा यथा आत्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवाञ्जस संपयुक्तम। कितने लोग को ये श्लोक सुना हुआ है आपने? पहली बार सुना है आपने? कई बार सुना है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है तृप्ति नहीं हुई, पहली बार सुन रहा हूं ऐसा लग रहा है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, कुछ हर बार श्लोक सुनते हैं नया लगता है श्लोक। लेकिन भगवान ग्यारहवें स्कंद में कहते हैं यथा यथा आत्मा, जितनी मात्रा में आत्मा या जीव परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरी पुण्य श्रवण कीर्तन मेरी कथा के द्वारा शुद्ध हो जाता है उतनी मात्रा में, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, वह वस्तु की सूक्ष्मता को समझ पाता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। और इसका अर्थ यह भी है कि भगवान की कथा की मधुरता को समझता है। जिस प्रकार से चक्षुर यथैवान जैसे संप्रयुक्तम, इस प्रकार से आंखों में अगर हम दवा देते हैं तो धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी आ जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन ये रोज करने से होता है। ठीक है, तो इनसाइट समझ रहे होंगे, जैसे जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले भगवान के संबंध में थी उससे आपकी अंतर्दृष्टि इनसाइट, इनसाइट को क्या इनसाइट ही कहेंगे इंग्लिश में, वो और डेवलप हो रही कि नहीं हो रही सुनने से। हाँ भगवान का ये बात है, सूक्ष्म ये बात है, अच्छा विलास रूप ये है, सुनते हैं सुनते 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 हृदय भी शुद्ध हो रहा है और ज्ञान तुमको प्राप्त हो ही रहा है। डीपर अंडरस्टैंडिंग, गहरी गहरी गंभीर समझावट होती जाती है। ठीक है, विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। ये समझ में आया? इस जगत के लोगों के जन्म और कर्म को चर्चा करने से क्या होता है, हमारे एक और जन्म और एक और कर्म की व्यवस्था हो जाती है कि नहीं, और हमारा कितना उत्साह होता है। आज ही मैं महाराज से सुन रहा था बहुत सुंदर बात, रुक्मिणी जी कह रही हैं कि भगवान कृष्ण को पत्र में लिखते हुए कि जो सिंह का शेर सिंह का हिस्सा है उसे श्रृगाल नहीं लेके जाना चाहिए। श्रृगाल मतलब शिशुपाल, श्रृगाल शिशुपाल एक जैसा मिलता जुलता है। तो महाराज में बहुत सुंदर टीका किए, कह कि उसी प्रकार से जीव की इंद्रियां भगवत सेवा के लिए हैं, तो साधक को यही सोचना चाहिए कि उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए हैं, उसे निम्न कार्यों में उसे नहीं लगाना चाहिए। ये भगवान का अपमान है, आपको याद है ना, ना भजंती अव जानंती स्थानात भ्रष्टात पतंते धा, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो प्रभवम आत्म प्रभवम तो है ही, हमारे स्रोत है, साथ साथ ईश्वरम भी है, कंट्रोलर भी है, तो दंड प्राप्त होगा। तो अगर भगवान की जन्म कर्म की लीला का चर्चा नहीं करते हैं तो फिर हमारा एक और जन्म कर्म की व्यवस्था बन रही, विचार कर लेना चाहिए इसको। और बोलने का अर्थ यह भी है कि सुनना जब हम, और सुनने का अर्थ होता है पढ़ना, जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तब कुछ बोल पाएंगे। ठीक है, तो इस अभ्यास को केवल क्लास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्लास के बाद भी पढ़ने का सुनने का प्रयास करना चाहिए। कभी आपने देखा है कुछ लोगों को, मैं यहां किसी उपस्थित भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन किया कि किसी व्यक्ति को कुछ बात अच्छी लगती है तो उसको बार बार बोलता है वो, आपको हो सकता है वो कथा सुना दी उसने फिर उसको बोलेगा, ऐसा लगता है उसको याद नहीं रहता है। मेरे संग भी ऐसा हुआ कभी कभी कि मैंने कोई बात बोली और भूल गया कि उस व्यक्ति को बोली है, फिर बोलना चालू कर देता। ऐसा हुआ है कभी आपने देखा है? तो इस प्रकार से हमें वो शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे लोग भौतिकता में इस प्रकार से उत्साहित रहते हैं उस प्रकार से हम लोग कृष्ण भावना में उत्साहित रहना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। हम लोग, मैं और पार्थ प्रभु लौट के आ रहे थे हरियाणा से ट्रेन से, तो छह बुड्ढे थे, मैं सोचता छह बुड्ढे छह घंटे तक बात करते रहे, टॉपिक तो वही था आहार निद्रा भय मैथुन पे था, लेकिन ऐसी पे बात कर रहे थे और उन्हें एक शिक्षा हमें प्राप्त हुई। कहा आप थोड़ा देर तो चुप हो जाइए, कहते नहीं हम इतने समय के बाद मिले हैं, बड़ी उत्सुकता है। तो उन्होंने कहा हमें भी भक्तों को आपस में मिल करके कथा कृष्ण कथा करनी चाहिए, इससे हम सबका कल्याण होता है। अतएव ये गुह्य हैं, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। क्या सीखा आपने? प्रभुपाद बोले अतएव, अतएव मतलब भगवान के जो जन्म कर्म है वे दिव्य हैं, पर भौतिक बुद्धि से समझ में नहीं आते। श्रद्धा से भक्ति से स्वीकार करे, बार बार सुने, जैसे जैसे उसकी हृदय शुद्ध होता जाएगा उसको बहुत अधिक समझ पाएगा। तो यानी कि कोई नाम जप ना करे, मॉर्निंग साधना नहीं करे तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझना छोड़ दीजिए उसको रुचि भी नहीं होगी। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भरतपुर में एक डॉक्टर साहब आते थे तो वो आना बंद कर दिए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ उनके साथ खराब बर्ताव किया, बस उनको कथा समझ में नहीं आती थी। ऐसे बहुत बुद्धि है, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, लेकिन समझ में नहीं आता था कथा क्या हो रही। और दूसरा उदाहरण था कि वहीं पे एक डॉक्टर साहब हैं प्रभु जी हमारे और माता जी दोनों, तो माता जी को का मन जो है बहुत वह रहता था, मतलब परेशान सा रहता था। तो आई क्लास सुनने आई सुनने आई सुनने आई, शुरुआत में कहती मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लगा। तो ये लेवल होता है, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, दूसरे बाद में समझ में आएगा लेकिन भूल जाएंगे, और फिर तीसरे लेवल में आपको समझ में भी आएगा और अब याद भी रख पाओगे कुछ बोला गया था। ये होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं लगे कि हर बार जो श्लोक हर बार कोट किया जाता है वो नया श्लोक है नहीं, ये सबकी स्थिति होती है शुरुआत में, तो क्या बोल रहे हैं। मुझे याद है IIT में सर हम लोग पूछे, भाई क्यों ये बताओ कि कृष्ण वाकई माता यशोदा से डर रहे हैं जब वो उनको डांट रही हैं या नहीं डांट रहे हैं, नहीं डर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब हमारे मन में तब हम स्टूडेंट थे, क्या फर्क पड़ता है कृष्ण डर रहे हैं या ना डर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है वो लेवल था। अब समझ में आता है कि हाँ भाई वो कृष्ण वाकई डर रहे थे, उनके प्रेम के कारण उनका जो है वो लीला शक्ति उनको बुला देती है कि भगवान है। तो एक लेवल था सुनने का, अभी थोड़ा और लेवल है सुनने का, और इसी को ये जो अप्रिसिएशन है वो बढ़ता जाता है जैसे भक्ति करते हैं। तो क्या सूत्र सीख रहे हैं, कौन सीख पाएगा, जो भगवान का नाम जप करेगा, भक्तों का संग करेगा, प्रसाद खाएगा, तब धीरे धीरे करके बातें समझ में आती। ठीक है ना, कोई प्रश्न है यहां तक? यस प्रो, माइक पे बता दीजिए, माइक दीजिए प्रभु जी।
आपने कहा कि भौतिक वार्ता अगले जन्म को
मैंने नहीं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी है क्या, हमने रिपीट किया है। यस ठीक है,
तो मेरे प्रश्न, और कहा जाता है कि एक व्यक्ति को दीक्षा के द्वारा दूसरा जन्म दिया जाता है,
दीक्षा के बाद दूसरा जन्म मिलता है। हाँ।
और भौतिक वार्ता दूसरे जन्म को दूसरे भौतिक जन्म को प्रोड्यूसेस
लाइफ। हाँ,
मेरा प्रश्न इतना है कि जन्म की परिभाषा क्या है मूल रूप से?
जन्म की परिभाषा क्या है? जन्म की परिभाषा है, शास्त्री जी बताएंगे, अच्छे कठिन प्रश्न मैं उन पे बाउंस कर देता हूँ। जन्म की परिभाषा क्या है? वैसे बहुत इजी है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारा जन्म ही नहीं ना इसलिए ध्यान नहीं रहता, अब याद आ गया। ठीक है बताइए, जन्म का क्या मतलब होता है?
समांतर जब ये स्थूल जो जीव है जो बद्ध अवस्था में रहता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर और अस्थूल शरीर रहता है।
हाँ।
तो जन्म का अर्थ है कि वो अस्थूल शरीर का जाना और सूक्ष्म शरीर मतलब फिर
जाना आना। क्या? जन्म का मतलब हुआ स्थूल शरीर मतलब, का आना।
हाँ, वो
हाँ।
एक नया स्थूल शरीर प्राप्त कर।
यस, अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण जो सूक्ष्म शरीर में लॉज रहती है, फंसी रहती है, स्थित रहती है, उसकी पूर्ति के लिए एक स्थूल शरीर दिया जाता है, और यह प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति नहीं कहना चाहिए, कर्मणा देव नेत्रणा, कर्मों के कारण और भगवान की अध्यक्षता में दिया जा रहा है। जैसे हम सबके अलग अलग कर्मों के अनुसार हम सबको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हैं, बुद्धि प्राप्त है। ठीक है, चलो फिर क्लास के बाद समझाएंगे। प्रश्न कह रहे हैं जन्म की डेफिनेशन क्या है, उसको हम अभी मेरा सेकंड हाफ क्लास का छूट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं।